أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم اجعل من الذين يستمعون القول ويتبعون ما أحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. جی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کتنی خوبصورت دعاؤں کے بارے میں سنا جن کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یاد کرنی ہے. مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے یاد کیے ہیں یا کتنوں نے لکھ کے اپنے سامنے کہیں پیسٹ کر دی اور اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کر دیا. بتائیں مجھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر کٹ کہتا ہے نا، وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش دیکھی جاتی ہے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کی کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے. تو جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جو ہر دن ایک دعا کو یاد کر رہے ہیں، تو کیا وہ اور جنہوں نے سن کر انسنا کر دیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ جنت تک پہنچنے کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ محنت. محنت کر کے جنت کمانی ہے. اور ماشاء اللہ آپ سب اتنے اہل علم اہل عمل لوگ ہیں. آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ عمل کے بغیر علم میں برکت نہیں ہوتی، تو کوشش کریں عمل میں آگے بڑھیں. اور جو ہم نے اتنی دعا میں ورائٹیز دیکھی ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا نا کہ دعا میں ورائٹیز کیوں ہیں، کیوں اتنی ورائٹی پائی جاتی ہے؟ تاکہ انسان کانشیس رہے. اللہ سے تعلق کوئی مشینی تعلق نہیں ہے میرا اور آپ کا کہ ہم رٹے رٹائے جملے بول لیا کریں، رٹے رٹائیں کچھ مخصوص دعائیں یاد کر لیں اور بس انہیں کو ساری زندگی پڑھتے جائیں. نہیں، اللہ سے تعلق ایک شعوری تعلق ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم اتنی ورائٹی ہے دعاؤں کی، ان کو یاد کرتے ہیں، پھر شعوری طور پر مانگتے ہیں، ایک ایفرٹ لگاتے ہیں، محنت کر کے پہلے یاد کرتے ہیں، پھر اپلائی کرتے ہیں، جب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو بھولتے ہیں، پھر دوبارہ اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس سارے پروسیس میں لذت ہے. اور یہ وہ کوشش ہے جس کے ذریعے انسان رب کو پاتا ہے. تو اس لیے پلیز یہ جو اذکار ہیں، یعنی خوبصورت خوبصورت دعائیں ہیں، آپ ان کو یاد کیجیے اور ان کو پڑھا کریں. آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ مفردون آگے بڑھ گئے. پوچھا گیا، یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والیاں. اور شیطان سب سے زیادہ ذکر سے دور جاتا ہے، تو جتنا انسان ذکر کرتا ہے شیطان دور چلا جاتا ہے. اب ہر وقت میرے اور آپ کے پاس پیمفلیٹس یا دعا کارڈز یا بک لیٹ تو نہیں اویلیبل ہوتی، تو ان سب چیزوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور اپنے سینوں میں محفوظ کر لیجیے. آج سے آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو کل لاسٹ لیکچر میں ہم نے 4 سے 5 دعائیں پڑھی ہیں، ان کو تو میں ضرور یاد کروں گی اور اپنی دعاؤں میں شامل کروں گی انشاءاللہ. آپ ایسا کریں گے نا؟ انشاءاللہ تعالی. ہر دن بس ایک دعا یاد کرنی ہے، پھر اگلے دن اس کو پورا دن مانگتے رہنا ہے، تو پھر اگلے دن نیکسٹ دعا. اس طرح 4 دعائیں ایزیلی آپ یاد کر لیں گے، اور پھر آپ مجھے بتائیں گے بھی کہ ہم نے دعا یاد کی ہے کہ نہیں کی. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. सबसे पहले आज हम देखते हैं कि कबूलियत दुआ के असबाब क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने औकात देखे ना, औकात, फिर इसी तरह कुछ अस्मा यानी कुछ दुआएं देखी हैं जिनके साथ दुआ लाजमी कबूल होती है। इसके अलावा भी दुआ कबूल होने के कुछ असबाब होते हैं। बसा औकात बाज़ लोगों की दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है और इसलिए कबूल हो जाती है कि वो सब ज़रूरतमंद होते हैं और फिर ज़रूरत की वजह से उनके अंदर इस्तराबी कैफियत पैदा हो जाती है और फिर कामिल इस्तराब के साथ वो अल्लाह ताला के हाँ मुतवज्जे हो जाते हैं। या ये कि दुआ करने से पेशतर दुआ करने वाले से कोई बड़ी नेकी वजूद में आ चुकी है, यानी दुआ करने से कबल उसने कुछ ऐसा अमल कर दिया जो उसके नज़दीक हल्का था लेकिन अल्लाह के नज़दीक बहुत वैल्यूएबल था। या इस किस्म की कोई और भलाई उससे वक़ू में आ चुकी है, यानी ऐसी नेकी जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं है। हम अक्सर ये बात बोलते हैं ना कि पता नहीं कौन सी नेकी कबूल हुई है जो मैं इस मुश्किल से बच गई हूँ, या ये परेशानी आते आते दूर हो गई या मुश्किल रुक गई वगैरह वगैरह। तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी नेकियाँ होती हैं जिनका हमें खुद भी इल्म नहीं होता। कोई मुश्किल में है, आपने एक हंसी वाला एक बोल बोल दिया, वो थोड़ी देर हंसा, वो अपने गम भूल बैठा, आपने उसको हंसा दिया, कितना बड़ा अजर है। किसी के हम और गम को आपने कुछ टाइम के लिए दूर कर दिया, उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ मांगी, तो क्या वो रब दुआ कबूल नहीं करेगा? तो ये भी रीज़न होती है कि बाज़ औक़ात इंसान कुछ ऐसा कर जाता है यानी कोई बड़ी नेकी कर बैठता है और उसके बाद दुआ मांगता है तो उसकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। या फिर दुआ किसी ऐसे वक्त में की गई कि वो इजाबती दुआ का वक्त था, या इस किस्म का कोई और सबब मौजूद होता है जिसकी वजह से उसकी दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। तो क्या हमने दुआ के असबाब पढ़े? नंबर एक कि दुआ में अगर शिद्दत हो, इस्तराब हो, फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा दुआ इसलिए जल्दी कबूल होती है कि उससे पहले कुछ नेकी इंसान कर बैठता है, या फिर उसने उस वक्त में दुआ मांग ली जो लम्हा कबूलियत का था। अल्लाह ताला मुझे और आपको वो लम्हात अता फरमाए, आमीन। अब ये होता है कि ये सारी कंडीशन देख कर ना बाज़ लोग ये गुमान करने लगते हैं कि इजाबत दुआ का सबब सिर्फ दुआ के अल्फाज और कलिमात हैं और उन अल्फाज और कलिमात पर ही वो तकिया कर लेते हैं और वो असबाब और बातें छोड़ देते हैं जिनकी वजह से उसकी दुआ कबूल हुई थी। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स एक मुफीद दवा किसी मुनासिब वक्त और मुनासिब मौके पर इस्तेमाल करता है और वो और उसके मर्ज में मुफीद साबित होती है। देखने वाला ये समझ लेता है कि सिर्फ उस दवा के इस्तेमाल से उसे शिफा मिली है, किसी दूसरे असबाब की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसका ये समझना कतान गलत है। दुआ की अफादा के लिए दवा के अलावा दीगर उमूर की भी ज़रूरत हुआ करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको समझने की कोशिश करें। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैंने ये वसीफ़ा इतनी दफ़ा किया तो मेरी औलाद हो गई, आप भी ये करें। फिर अगला इंसान भी उसको तकिए कलाम बना लेता है, ऐसा होता है ना, ये जिक्र इतनी दफ़ा करें या वह दूध इतनी दफ़ा पढ़ें और ये मुश्किल दूर हो जाएगी। भाई इट्स ओके, लेकिन इसके पीछे कुछ और असबाब हैं जिनके बिना पे दुआ कबूल हुई है। देखें, जब एक डॉक्टर कोई मेडिसिन रिकमेंड करता है और वो साथ बताता है कि 3 times लीजिएगा या इतने अमाउंट में लीजिएगा, इतने स्पून्स लीजिएगा, तो इन सब चीज़ों को जब एक पेशेंट फॉलो करता है तो तब जाके वो ठीक होता है। ऐसा नहीं होता कि वो जो मेडिसिन थी बस उसने ठीक कर दिया, नहीं, किस टाइम ली, कितनी मकदार में ली, लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा और उसके साथ क्या क्या डॉक्टर ने मना किया था, उस सब से बचा, सब असबाब को मिलाकर, सब असबाब को फॉलो करके वो ठीक हुआ है। सिर्फ एक मेडिसिन ने अपना रंग नहीं दिखाया। तो इसी तरह जब कोई इंसान दुआ करता है तो दुआ के अल्फाज के साथ साथ और भी बहुत से अनासर होते हैं जो उसको कबूलियत तक पहुंचाते हैं। तो बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार होते हैं और इस किस्म की गलत फहमियों में से एक ज़बरदस्त गलत फहमी ये है कि कोई शख्स अपनी इस्तराबी कैफियत के साथ किसी कब्र पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर बारगाहे इलाही में मुस्तरबाना हालत में दुआ करता है, रोता और गिड़गिड़ाता है और फिर उसके मुस्तरबाना हालत के बिना पर उसकी दुआ कबूल हो जाती है। अब जाहिल लोग ये समझते हैं कि मकबूलियत दुआ का सबब और राज ये कब्र है, हालांकि ये समझना गलत है। मकबूलियत दुआ का सबब और राज उसका इस्तराब और बारगाहे इलाही में उसके मुस्तरबाना इल्तिजा और उसका अज़्ज़ो इंकिसार है। तो याद रखिएगा, बहुत से लोग जिनको यकीन होता है वो जब कब्रों पर जाके मांगते हैं तो उनको मिल जाता है, और जिनको यकीन नहीं होता वो बेशक जाके मांगे रोएं उनको नहीं मिलता। क्या रीजन होती है? एक इंसान जिसको यकीन है वो बहुत तड़प के साथ बहुत मुस्तरिब होकर वहां जाके मांगता है तो उस अंसर के बिना पर उसकी दुआ कबूल होती है। तो खुलासतुल कौल ये है कि असल चीज दुआ में शिद्दत का होना है। मुझे इकबाल का एक शेर भी याद आ रहा है ना, आपको याद है? कोई मुझे बता सकता है? मौके महल की मुनासिबत से बहुत ज़बरदस्त वो शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। तो जो इस्तराब होता है वो कबूलियत का दर्जा बनता है। हलचल में भी आप पॉजिटिव साइड देखा करें, जब बहुत मुस्तरिब हों उसकी पॉजिटिव साइड देखें कि हाँ अब तो मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, अम्मन युजीबुल मुत्तर व यकशिफुस सु, कि कौन है जो बेकरार और बेचैन शख्स की दुआ सुनता है और उसके कर्ब को दूर करता है। याद रखिएगा कि इस्तराब ये एक फितरी अमल है। कोई भी मुश्किल आती है, परेशानी आती है तो मुस्तरिब होना, बेचैन होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम कभी ये नहीं कह सकते, मसलन कोई भी मुश्किल आ गई हम कहें कि नहीं दिल थोड़ा नहीं करो, इट्स ओके रिलैक्स रहो, नहीं हो सकता, वरना तो इंसान रिबोट बन जाता। लेकिन हाँ, रिएक्शन पर हमारे इख्तियार है कि हमारा रद्द अमल कैसा होता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, रोना धोना, या खुद को फीड देते हैं कि नहीं मैंने उठना है और मैंने साथ दुआ करनी है। मुस्तरिब हूँ, दुआ में शिद्दत लानी है तो अल्लाह ताला ज़रूर इस कंडीशन से बाहर निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब कभी मुस्तरिब हों उस मौके पर ज़्यादा दुआ मांगा कीजिए, क्योंकि ऐसी दुआ ज़रूर कबूल होती है।